यीशु ने जवाब में से कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। यूहन्ना की अंजील 13 बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे पाक कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोल चुके हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे पाक रूह की मामूरी के बगैर, खा खुदावंद हम कितने ही तेरी तरफ मुतवज्जो हों, खुदावंद अबलीस हमें हमारी तवज्जो में हायल होकर दूसरी तरफ ले जाता है। हमें तेरे पाक रूह की मामूरी की ज़रूरत है ताकि तेरे पाक कलाम को सीखें, सिखाएं, कबूल करें और उस पर अमल भी करें। यीशु नाम का वसीला देकर मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एक बाप बहुत अमीर बाप था और दिन ब दिन वो बुजुर्ग होता जा रहा था। खुदा को प्यार करने वाला शख्स था। उसका खानदान सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमल था, एक वो था और एक उसका बेटा था। और बहुत अमीर के बेटों की तरह, जिस तरह के अमीर बच्चे होते हैं, वो भी कोई बाप के इतना फर्माबरदार नहीं था। खुदा से अपने बाप की तरह डरने वाला नहीं था और बाप को अपने बेटे की बेराहरवी जो थी वो बड़ा परेशान करती थी। हर वक्त उसे समझाया करता था और एक दिन वो बड़ा रंजीदा हुआ। उसने बेटे को बिठा लिया और उससे कहा कि बात यह है कि अगर तू अपनी राहों को दुरुस्त कर ले और दुरुस्ती का सबूत मुझे दे और खसूसियत के साथ अपनी तालीम को मुकम्मल करे और तू यूनिवर्सिटी के जिस भी दर्जे में है, अगर उसे इम्तियाज के साथ पास करे तो मैं समझूंगा कि तूने अपनी राहों को दुरुस्त कर लिया है और तू मेरी खुशी का बायस होगा। उसने अपने बाप के साथ एक मुआहदा किया कि अगर मैं यूनिवर्सिटी को टॉप करता हूं तो आप मुझे जो उस वक्त की महंगी तरीन गाड़ी थी, आप मुझे वो तोहफे में देंगे। बाप ने उसकी बात को मान लिया। रिजल्ट निकला, बेटे ने टॉप किया। बाप को पता चल गया था, बच्चा घर में आया, उसने अपने बाप को खुशखबरी सुनाई और बाप ने उसे सीने से लगाया, शाबाश दी और उसने कहा मेरा गिफ्ट। तो बाप ने एक पैकेट उसे दिया जो कि खुली बाइबल का पैकेट था, यानी बाइबल गिफ्ट में उस बच्चे को दी। उसने बाइबल को मेज पर ऐसे फेंका और वो बकता हुआ और बड़े गुस्से में वो अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ गया। बाप ने भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। कुछ वक्त के बाद बाप मर गया, लंबी चौड़ी जायदाद थी, बेटा तो घर से जा चुका था, बेटे को भी पता चला, वापस आया और उसका वकील जो था उसके बाप का, वो भी उसके बेटे को मिला, अफसोस किया और उसने वो जो वसीयत नामा था जिसके ये बेटा अपनी पूरी जायदाद का हकदार हो चुका था, उस वकील ने उस बेटे को दे दिया और उसके साथ ही एक बड़ी मेंशन जिसमें वो और उसका बाप रहा करते थे और जिसको छोड़कर वो जा चुका था, उसकी चाबियां भी उसे दी। वो घर में आया, दरवाजा खोला, उसी तरह घर जैसे कि उस छोड़कर गया था। बाप तो एक ही था, नौकर वगैरह तो थे, अब बाप मर चुका था, घर बंद था। अंदर गया, टेबल पर वही बाइबल पड़ी थी और उसने बाइबल का जो पैक था उसी तरह बंद था। बाप ने बड़े प्यार के साथ उसे गिफ्ट रैप में रैप किया हुआ था, बंद था। खोलना तो इसी ने था लेकिन इसने नहीं खोला और इसने उस पैकेट को खोला, बाइबल को खोला और उसमें एक चेक था, प्लेन चेक था जिस पर डेट नहीं थी। बाप के नीचे दस्तखत थे, एक छोटा खत था साथ के, तेरा जितना भी दिल करता है, जितने की वो कार आती है तू इस पे लिख ले। ये चेक और ये बाइबल मेरी तरफ से तेरी कामयाबी का इनाम है। बेटा बैठकर बहुत रोया और उस वक्त को याद करता रहा जब उसने बाप की इस रम्स को और इस बात को जब वो नहीं समझ सका। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं और हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बाज़ूकात हम समझ आते हैं और बाज़ूकात हम नहीं समझते हैं। हम एक धुंधलेपन के साथ वक्त गुजारते हैं, एक तजबजब रहता है, हम झुंझलाहट का शिकार रहते हैं कि ये बात मेरी समझ में, ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। यही माहौल हम यहां इस अंजीली बयान में भी देखते हैं कि ईद फसा के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और पत्रस भी इसमें शामिल था। खुदावंद यीशु मसीह जब पांव धो रहा था तो पत्रस इस बात को जानने के लिए बेकरार था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस बात के लिए पांव धो रहा है, क्यों अपने आप को इसने इतना नीचे कर लिया है कि मुझ जैसे लोगों के ये पांव धोने को है, इसका क्या मतलब है। एक धुंधलापन उसके जहन पर था और वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है। और खुदावन ने उसे कहा कि ठीक है, अब जो मैं कर रहा हूं तुझे उसकी समझ नहीं आएगी, तू नहीं जान सकेगा कि ये क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तू नहीं समझ सकता, लेकिन एक वक्त आएगा बाद में तू समझेगा और बाद में तू जानेगा। मैं जो करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में तू समझेगा। हमारी जिंदगी भी दुखों से और खुशियों से इबारत है। किसी ने जिंदगी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर खींची है कि अजीब है ये जिंदगी, कभी है गम कभी खुशी, मची है यहां तबाहियां जहां थी रौनकें कभी। हर शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो, उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी हो, हर तरफ बहार ही बहार हो, हर तरफ फूल हो, कोई परेशानी कोई दुख कोई फिक्रमंदी कोई उलझन उसकी जिंदगी में हरगिज ना आए। ये मेरी भी ख्वाहिश है, ये आपकी भी ख्वाहिश है, ये आपकी भी ख्वाहिश है, दुनिया के हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि उसकी जिंदगी कभी कोई परेशानी वाला लम्हा परेशानी वाला वक्त जो है वो ना आए। मगर ये जिंदगी के असूल के खिलाफ है, ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्यों? किसी ने फिर कहा है कि सब आते एक तगैयर को है जमाने में, कि अगर इस दुनिया में कोई चीज कायम रहने वाली है जिसको सबात है जिसको ठहराव है तो वो तब्दीली का अमल है। कभी नहीं हो सकता कि हर वक्त रात ही रहे और दिन ना हो, या कभी हुआ ही नहीं है कि हर वक्त दिन रहे और रात ना हो, हर वक्त दोपहर हो और शाम ना हो, हर वक्त अंधेरा हो और कभी उजाला ना हो, ये होता नहीं है, ये जिंदगी का असूल और दस्तूर नहीं है। लेकिन जब जिंदगी में खुशी ही खुशी होती है, खुशहाली ही खुशहाली होती है, और जब तरक्की ही तरक्की अरूज ही अरूज होता है, उस वक्त हमारा जो ईमान है उसका इम्तिहान भी नहीं होता है, क्योंकि हर काम बड़ा ठीक ठाक चल रहा होता है और कोई ऐसा लम्हा नहीं आता है कि हम जरा रुकें और देखें कि मैं ईमान के किस अरूज पर हूं, ईमान की कौन सी मंजिल है, ईमान की सीढ़ी का कौन सा कदम है जिस पर मैं खड़ा हूं, कभी हमारे जो ईमान है उसका इम्तिहान भी नहीं होता है। और जब जिंदगी बदलती है, जिंदगी के शब और रोज बदलते हैं, और जब दुखों का, तकलीफों का अजियतनाक दौर शुरू हो जाता है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी दिखाई देती है, फिक्रमंदी है, दुख है, मुसीबत है, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया जो है वो मेरे खिलाफ है, और पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक रहेगा, और ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और ये कब तक रहेगा। और बाज़ू का तो तलखी इस कदर बढ़ जाती है कि खुदा की ज़ात पर भी शक शुरू हो जाता है कि अगर वो खुदा है, अगर वो मुझे प्यार करता है, तो फिर उसने मुझे दुख में क्यों डाला हुआ है, उसे मेरी परवाह क्यों नहीं है। फिर इंसान यहां तक चला जाता है और वहीं से उसके इम्तहान जो ईमान का इम्तहान है उसका पता चलता है और उसका आगाज होता है। जिंदगी के कड़े वक्तों में पता चलता है कि हम ईमान के किस दर्जे पर खड़े हैं। किसी शख्स ने कहा कि मैंने जिंदगी के बेहतरीन तजर्बे जो हैं वो उस वक्त हासिल किए जबकि मेरी जिंदगी में दुख थे, परेशानियां थी, मुसीबत थी, और जब खुशहाली थी मुझे कभी उन तजर्बों का एहसास नहीं हुआ था। मेरे पास जो तजर्बों की दौलत है, मेरे पास जो स्पार्क है, जो जिंदगी ने मुझे सिखाए हैं, वो खुशियों ने नहीं बल्कि वो दुखों ने, परेशानियों ने, फिक्रमंदियों ने मुझे वो तजर्बात दिए हैं। मेरे अजीजों, हमने वाइज की किताब का तीसरा बाब पढ़ा है, और जब मैंने ये दिया था तो मुझे ये सुनना पड़ा कि ये तो बहुत लंबा बाब है, 22 आयात बहुत लंबी हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी थी। एक आयत, एक लफ्ज हमें ये बताता है कि ये जो हमारी जिंदगी है ये वक्त की पाबंद है। एक एक लम्हा जो है वो गिना हुआ है। हम इससे बढ़कर जी नहीं सकते हैं, हम इसे बढ़कर मर नहीं सकते हैं। हम अमाल की किताब उसका 17वां बाब 11वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदा ने इस रूए जमीन पर हमारी सुकूनत की हदें और मियादें मुकर कर रखी हैं, इससे बढ़कर और इससे कम कोई जी नहीं सकता है। और जितना भी वक्त हम वाइज की किताब में, बुक ऑफ एक्लिजियास्टस में पढ़ते हैं, इसमें हम खुदा को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखते हैं। हमारा जो जेन है इसका मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 0.005% भी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। हम समझ ही नहीं सकते हैं कितने ही छात्र क्यों ना हो, कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हो, कितने ही जहीन क्यों ना हो, हम नहीं जान सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट लम्हा मेरी जिंदगी में आने को है वो क्या होगा। यहां पर क्या लिखा है कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता है। हम खुदा के कामों को जान नहीं सकते हैं। और जब जिंदगी में खुदा काम करता है और सब कुछ जो मेरी जिंदगी में होता है वो खुदा की तरफ से होता है, खा खुशी का वक्त है, खा दुख का वक्त है, तो ये सब खुदा की तरफ से। खुदा का पाक कलाम कहता है, आप जरूर अपनी फुर्सत में एक मरतबा फिर ये जो वाइस का तीसरा बाप है वो पढ़ें। हर एक चीज, हर एक बात जो है वो खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी में आती है क्योंकि वो काम करता है। अगर दुख आते हैं तो वो उनको दुख लाता नहीं है, वो दुख भेजता नहीं है, लेकिन दुखों को आने देता है। दुख अगर किसी और समझ से आ रहे हैं तो वो रोकता नहीं है। ये मोमबत्ती है, मुझे पता है कि अगर मैं इसकी लो पे हाथ रखूंगा तो मेरी उंगली जलेगी, وہ مجھے روکتا نہیں ہے, مجھے کرنے دیتا ہے. بالکل اسی طرح اس نے مجھے نہیں کہا کہ میں جا کر اس کے اوپر, اس نے مجھے سمجھ دی ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کیا نقصان ہے. لیکن اس کے باوجود اگر میں اپنی انگلی جلانا چاہتا ہوں تو وہ مجھے روکے گا نہیں. بالکل اسی طرح دکھ اور رنج اور مصیبت اور تکلیفیں خواہ کسی بھی سمجھ سے آتی ہیں, وہ انہیں روکتا نہیں ہے, وہ انہیں آنے دیتا ہے. اور جب خوشیوں کو آنے دیتا ہے اور خوشیاں بھی بھیجتا ہے, تو جب وہ دکھوں کو آنے دیتا ہے تو پھر بعض اوقات ہم بہت جیسے کہتے ہیں کہ بے رحم ہو جاتے ہیں ایوب کی بیوی کی طرح, کہ اس پر تکفیر کر, خدا معاف کرے کہ اس کو برا بھلا کہے, اور بھی سخت لفظ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, اس کو برا بھلا کہے اور مر جا. بعض اوقات ہمارا جو زندگی میں پریشانی کا سلسلہ ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کی ذات پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خدا پر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, کیا وہ پشاور کی کلیسیا سے محبت کرتا ہے, کیا اسے پشاور کی کلیسیا کی پرواہ ہے, فکر ہے. اگر فکر ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے, پھر ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, خواہ میری زندگی ہے, خواہ ہم سب کی زندگی ہے, خواہ قومی زندگی ہے, خواہ ملکی زندگی ہے, خدا کو ان زندگیوں میں کام کرنے کا اختیار ہے, اور خدا قادر مطلق ہے, اور خدا زندگیوں میں کام کرتا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا اعمال کی کتاب کے نامے باب کو ذہن میں لے کر آئیں. جبکہ اپنی زندگی میں وہ شخص خود ہی کام کر رہا تھا یا کوئی اور کر رہا تھا, یعنی سول ترسیسی کلیسیا کو ستانے کے لیے جا رہا تھا, اور خدا نے اسی وقت جب کہ وہ کوئی اور دکھ دینے والا کام کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس کی زندگی میں اپنی مرضی کو پورا کرنا شروع کیا یا اپنا کام کرنا شروع کیا, تو خداوند نے اسے تبدیل کر دیا, دمشق کے راستے پر اسے تبدیل کر دیا. اور اعمال نو باب کی چھٹی آیت میں پڑھتے ہیں, خداوند نے اسے تبدیل کر کے, ساؤل ترسیسی کو تبدیل کر کے اس سے کہا, اٹھ شہر میں جا اور جو کچھ تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا. اٹھ اور شہر میں جا, تبدیل کر دیا, زندگی میں کام کیا, تبدیل کیا. اور خداوند نے اسے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ پوچھے کہ کیوں ایسا کیوں ہوا, وائے, کیوں یہ جو تبدیلی ہے, یا یہ تو مجھے تو نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کیا, کیوں اسے کہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب خداوند زندگیوں میں کام کرتا ہے, میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں, آپ کی زندگی میں, تو ضروری ہے کہ ہم اس سے کچھ سوال کریں. اگر ہم جان چکے ہیں کہ خداوند کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ زندگیوں میں کام کرتا ہے, یہاں پر لکھا ہے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے, دریافت نہیں کر سکتا, پھر پوچھنا تو چاہیے. جب خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تو ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک اور سوال کر سکتے ہیں, صرف ایک لفظ کا, کہ کہاں, کیونکہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. پولوس کو کہا تھا کہ اٹھ اور شہر میں جا, اور جب خدا کام کرنا زندگیوں میں شروع کر دیتا ہے تو آپ ایک سوال اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے, ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم پوچھ سکتے ہیں کہاں. ایک پھر اور سوال بھی کر سکتے ہیں, کیسا یا کیسے. پولوس رسول کو اس سوال کی ضرورت تھی کہ کیسے, کیونکہ عملی رہنمائی کی اسے ضرورت تھی کہ وہ خدا کی مرضی کو جو کہ اس کی زندگی میں جاری ہے کیسے پورا کرے. اور چوتھا, کہ کب. ہم کہاں کیسے کب یہ سوال کر سکتے کب کیونکہ وقت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کب ابھی فوری طور سے تو اٹھ اور شہر میں جا. آرمی پرنسپل ہے فرسٹ اوبے دین آرگو اور یہی پرنسپل خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اٹھ پہلے تو اٹھنے کی ضرورت ہے بعد میں ساری باتیں ہیں جانے کی ضرورت ہے بعد میں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں بھیجا کس لیے بھیجا. فرسٹ اوبے دین آرگو اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے کہ کیوں میری زندگی میں یہ بربادی کیوں آئی ہے پشاور میں یہ حادثہ کیوں ہوا ہے. ہاں ہم پوچھ بھی سکتے ہیں جب ہم الجھن میں ہوتے ہیں جب ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں یہ کام کیوں ہے اور پھر اس کیوں کا جواب بھی ہمیں ملے گا اور جواب بالکل یہی ہوگا جو کہ اسے پطرس کو ملا تھا کہ جو میں کرتا ہوں کیونکہ وہ مصیبتوں کو روکتا نہیں آنے دیتا ہے پھر جواب یہ ہوگا ہمارے کیوں کا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. یا دوسرے لفظوں میں وہ ہمارے نزدیک آئے گا جب ہم دعا میں ٹھہر کر پوچھتے ہیں خداوند کیوں ہوا یہ کیسے ہوا کیوں ہوا ہے اور وہ نزدیک آئے گا اور کہے گا ہاں ٹھیک ہے اب تو سمجھتا نہیں ہے بات کو تو ضرور سمجھے گا لیکن جب تک تو ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے اس وقت تک تو مجھ پر بھروسہ رکھ اور میرا یقین کر مجھ پر بھروسہ رکھ اس وقت تک جب تک کہ یہ باتیں تجھ پر واضح نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک یہ ہے کہ تو مجھ پر بھروسہ رکھ کیونکہ ابھی نہیں لیکن تو بعد میں سمجھے گا. یسوع نے جواب میں اسے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اگر ہم سب مل کر پڑھیں یوحنا 13:7 اگر آپ کے پاس بائبل ہے مہربانی کے ساتھ کھولیں یوحنا 13:7 تاکہ ہم اسے بہتر طور سے دیکھ سکیں. آئے ہم مل کر پڑھیں یوحنا جون 13:7 آپ انگلش میں ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یسو نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے یسو نے جواب میں اسے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس آیت میں تین ابھرتے ہوئے خیال جو ہیں وہ ملتے ہیں. ہم تین باتوں کو بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں. پہلا خیال کہ خدا اپنے بچوں کی زندگیوں میں اور زندگیوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے. زندگیوں میں اور زندگیوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے پشاور کے اندر بہت تباہ کاری ہوئی ہے لیکن وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسی تباہ کاری نے ان لوگوں کو ہمدردی دکھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. انہوں نے آ کر کام کرایا ہے اور انہوں نے غم زدہ لوگوں کے ساتھ اپنے غم کو شیئر کیا ہے. خدا اپنے بچوں کی زندگیوں میں اور زندگیوں کے ذریعے سے دوسروں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. پہلا خیال ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بچوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. میں کس کا ہوں؟ کسی کا بھی نہیں, صرف ایک کا ہوں, خدا کا ہوں. آپ بھی خدا کے ہیں, آپ بھی خدا کے ہیں. آپ اور ہم اس کی خریدی ہوئی چیز ہیں. خواہ وہ ہمیں یہاں پر رکھے خواہ وہ ہمیں وہاں پر رکھے, ہم بازار میں جاتے ہیں, چیز کو خریدتے ہیں. یہ ہماری مرضی ہے, بیگ کے اندر ہو ये हमारी मर्जी है जेब के अंदर हो, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। यहां पर अगर उसने रखा है तो वहां पर भी वो उन लोगों को रखता है जो कि उसके बच्चे होते हैं, और उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हम उन्हें, ये जितने भी लोग हैं, हम उन्हें बहुत कम कहते हैं कि वो हलाक हुए हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो शहीद हुए हैं, क्योंकि उनका दर्जा हलाक होने वालों से मुख्तलिफ है। हमें तो अपनी जो कि तबई मौत मरेंगे, हमें तो बाद की बातें हैं, लेकिन वो जो कि यीशु की गवाही देते हुए मरते हैं, उन्हें यीशु कहता है कि तू आज ही मेरे साथ, आज आज, ये नहीं कि 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, आज ही। वो जो के गवाही देते हुए, मार्टोरियन यूनानी का लफ्ज है और इसी से मार्टर लफ्ज निकला है, और जिसका तर्जमा है शहीद। मार्टर, मार्टोरियन, मार्टोस, इन सारे लफ्जों का एक ही मतलब है, और वो है गवाह, गवाही देने वाला, शाहिद, जो देखता है, शहादत देने वाला। तो खुदावंत सिंकियों में काम करता है, और अपने बच्चों को, जिनको उसने खून के साथ खरीद रखा है, अपनी मलकियत बनाता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। और आप इस आयत के लफ्ज को गौर से देखें, क्योंकि हम पहला ख्याल शेयर कर रहे हैं कि यीशु काम करता है। क्या लिखा है आयत का, आयत के शुरू में, यीशु ने जवाब में उसे कहा जो मैं करता हूं, व्हाट आई डू। जीसस इज एक्टिव, ही इज एक्टिवली वर्किंग इन आवर लाइव्स। वो जिंदगियों में मुतहरिक है, काम करता है। ऐसे नहीं है कि वो, यहां पर हमारी आयत का पहला हिस्सा, पहला ख्याल जो है यह है कि यीशु जिंदगियों में, अपने बच्चों की जिंदगियों में काम करता है। यीशु हमारी जिंदगियों में, अपने बच्चों की जिंदगियों में, अपनी मलकियत की जिंदगियों में, जिनको उसने खरीद रखा है, तुम अपने नहीं, तुम खुदावंत, खुदावंत के हो। जिनको उसने खरीद रखा है उनकी जिंदगियों में काम करता है। अगर आप रूमियों के नाम खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत खोलें मेहरबानी के साथ, अगर आप खोल चुके हैं तो आप में से कोई ऊंची आवाज में पढ़े, रूमियों 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत, बेहद मशहूर आयत है, हम सबको, मैं उम्मीद करता हूं कि जबानी आती है। आए हम मिलकर पढ़ें, और हम सबको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए, खुदा काम करते हैं। लेकिन इस आयत से कैसे साबित हो? बाल का तर्जमे हम पर बाइबल के मतालब को, बाइबल के मानी को जाहिर करते हैं। इसका इंग्लिश तर्जमा हमें इस ख्याल को समझने में मदद देता है कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। इंग्लिश तर्जमा क्या है? वी नो दैट गॉड वर्क्स ऑल थिंग्स टूगेदर फॉर गुड फॉर द वंस हु लव गॉड फॉर दोज हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। वी नो दैट गॉड वर्क्स, हम जानते हैं कि खुदा काम करता है। वर्क का मतलब है काम करना, खुदा काम करता है। गॉड वर्क्स का मतलब है खुदा काम करता है। मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में खुदा एट वर्क है, वो काम कर रहा है, फर्क नहीं है, काम करता है, इलाही काम जारी है। क्या किसी ने इस बात की गवाही दी है? क्या किसी ने बताया है कि वाकई खुदा जिंदगियों में काम करता है? हां, बताया है, पौलुस ने बताया है, पौलुस की जिंदगी में काम हुआ और उसने बताया। फिलिप्पियों 1वां बाब और उसकी 6वीं आयत में उसने फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखकर बताया कि खुदा काम करता है। क्या लिखा उसने? फिलिप्पियों 1वां बाब और उसकी 6वीं आयत, मेहरबानी के साथ अगर आप निकाल चुके हैं तो पढ़ें, ताकि हम भी एक्टिव हों और हम भी काम करें बाइबल को खोलने का और बाइबल को पढ़ने का। फिलिप्पियों 1वां बाब 6वीं आयत,
तो
शुक्रिया। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नए काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। और फिर इफ़सियों की कलीसिया को भी खत लेकर मुकद्दस पौलुस रसूल बताता है कि कौन सा काम है, कौन सा काम है जो कि खुदा हमारी जिंदगियों में करता है। इफ़सियों दूसरा बाब 10वीं आयत में क्या लिखा है, हम मिलकर पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में नए कमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए। हम उसकी कारागरी हैं, पहली तो बात यह कि उसने हमें बनाया है, ये काम है। फिर जो कुछ भी हम काम करते हैं वो उसी का काम है और वो हमारे जरिए से करवाता है, खा हम स्टूडेंट हैं, खा हम पासवान हैं, खा हम सीखने वाले हैं, खा हम सिखाने वाले हैं, खा हम शिफा का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं। कुर्सियों में लिखे जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। बाजुकात हम अपने काम को अपना काम समझते हैं लेकिन खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। अगर मैं आज पासवान हूं, अगर मैं आज स्टूडेंट हूं, अगर मैं आज नर्स हूं, अगर मैं आज डॉक्टर हूं, तो ये किसका काम है? ये खुदावंद ने मुझे दिया है और मेरे जरिए से वो ये काम करता है। हम अपने आप इंग्लैंड में नहीं आ सकते थे, इंग्लैंड पाकिस्तान का कोई अंदरूनी शहर नहीं है कि उठे और चल दिए और शाम को वहां पर पहुंच गए। बहुत सारे जो रास्ते थे, मुश्किलें थी, उनको फान कर यहां आए हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि आना चाहते थे लेकिन वो किसी ना किसी मरहले पर आकर फेल हो गए, वापस चले गए। ये खुदावंत है जो कि हमें यहां पर लेकर आया है। लेकिन क्यों हम जबूर 37 और उसकी 23वीं आयत में पढ़ते हैं कि इंसान की रवशें खुदावंत की तरफ से कायम है। हम जो भी हैं, हम जहां भी जाते हैं, जो भी हमारे रास्ते हैं, जिन पर हम चल रहे हैं बशर्ते के नेक, वो खुदावंत की तरफ से कायम हैं। इकोनॉमिक्स में ये जो काम है उसकी तारीफ की गई है कि काम उसे कहते हैं जो कि अखलाकी तौर पर बेहतर हो, जो कि अखलाकी तौर पर करने वाली चीज हो। काम तो चोरी भी है लेकिन हम इकोनॉमिक्स में इसे वर्क नहीं कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम कहते हैं कि इंसान की रवशें, तो वो रास्ते जो कि नेक रास्ते हैं वो खुदावंद की तरफ से कायम है। अभी हमने पढ़ा है कि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, नेक अमाल करने के लिए। ये हमारा इलेक्शन है, खुदावंद ने हमें नेक काम करने के लिए, नेक रास्तों पर चलने के लिए इलेक्ट किया है। और फिर उसने ये भी बताया है कि रास्ता मैं हूं। आम द वे बाजुकात लोग कहते हैं कि जो नहीं मजहब नो मैं नहीं मानता, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरा मजहब तो कोई मान लेगा, मैं मेरा मजहब पे ईमान है, मैं बिल्कुल मजहब को मानता हूं। मजहब पे हम सब का ईमान आपकी मर्जी है लेकिन होना चाहिए। मजहब का मतलब क्या है? मजहब का मतलब है रास्ता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं रास्ता हूं। अगर मेरा मजहब खुदावंद यीशु मसीह नहीं है तो फिर ठीक है, मजहब को नहीं मानना चाहिए। अगर मजहब का मतलब रास्ता है और मेरा रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है, तो फिर मजहब को मानना मेरे लिए एक फख्र की और खुदावंद में शुक्रगुजारी की बात है, मैं मजहब को मानता हूं। और यह बहुत खूबसूरत बात है कि जब खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है वो हमें उन्हीं रवशों पर लेकर जाता है, उन्हीं रास्तों पर चलाता है और वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। जिंदगियों में काम करने के लिए उसके पास एक ब्लूप्रिंट है, उसके पास एक नक्शा है, उसके पास एक जिसे हम कहते हैं प्लान है, वो हमारी जिंदगियों में एक प्लान के साथ काम करता है। फिर वो जो कुछ हमारी जिंदगियों में करता है या होने देता है, उसको वो बड़ी मोहब्बत और प्यार से जारी रखे हुए है, और वो हमारी भलाई ही के लिए होता है। खुदावंद जब हमारी जिंदगियों में काम करता है तो वो हमारी भलाई के लिए होता है। यर्मिया नबी के जरिए से खुदावंद ने मुझे और आपको ये बात समझाई है कि जो भी वो हमारी जिंदगी में काम करता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। यर्मिया 31 बाब और उसकी 30 आयत में क्या लिखा है, अगर आप निकाल चुके हैं तो हम सब मिलकर पढ़ते हैं। यर्मिया की किताब उसका 31 बाब और उसकी 30 आयत, बुक ऑफ यर्मिया चैप्टर 31:3 लिखा है, खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। खुदावंद की मोहब्बत हर लम्हा हर वक्त खामोशी के साथ हमारी जिंदगियों में जारी है। खुदा मोहब्बत है और इसीलिए उसकी मोहब्बत हमारी जिंदगियों में काम करती है। अगर यहाँ पर बैठी कोई माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, बच्चा अपने बाप से मोहब्बत करता है, बहन अपने भाई से, तो ये खुदा की मोहब्बत है जो कि उसने हमारी जिंदगियों में डाली हुई है। वो मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत हमारी जिंदगियों में बड़ी खामोशी के साथ लेकिन बड़े मुतवातर तरीके से काम कर रही है। हाँ, हो सकता है कि परेशानी और दुख के लम्हों में हम कहीं कहें कि बात यह है कि अगर इतनी परेशानी है तो खुदा, मैं तो शक करता हूँ खुदा की मोहब्बत पे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बसा औकात खुदावंद इन तकलीफों को, इन परेशानियों को आने देता है, क्योंकि हमारी जिंदगी ईमान की जिंदगी है, ताकि हम अपने ईमान का इम्तहान कर सकें, हम देख सकें कि हम कहां पर खड़े हैं। मैं एक मरतबा फिर वही मिसाल दूंगा जो कि मस्कत में शांति नगर का एक शख्स था। जब हमने उसे तसल्ली दी, मेरे साथ एक और साहब भी थे, हमने उसे कहा कि कोई बात नहीं है, ये ईमान की आपकी परख है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम ईमान भी लाओ और दुख भी सहो। उन्होंने कहा जी काला ईमान, बंदूक दी डाली से काला ईमान। एकदम मेरे और उस शख्स के मुंह से निकला कि यही तो वक्त है। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे असीसो, खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है, इन परेशानियों को आने देता है, लेकिन इन परेशानियों में वो हमारे साथ होता है और वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें तरबियत करता है। खुदा की तरबियत गाह में दुख है, खुदा की तरबियत गाह में मुश्किलें हैं। जिसने भी खुदा ताला की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, ईमान के रास्तों पर चला, सबसे पहले उसका वास्ता तकलीफों से मुसीबतों से पड़ा। इब्राहिम ने खुदावंद की आवाज़ को सुना, उसके रास्तों पर चला, मुसीबतों का शुरू हुआ और उसे अपने घर भार को छोड़ना पड़ा। पौलुस को ईमान के रास्तों पर चलना पड़ा तो मुसीबतें उसके रास्ते में हायल हो गईं, लेकिन वो इन सारी मुसीबतों को फलांगता चला गया। दूसरा क्रंथियों 12 बाब में हम मुकद्दस पौलुस रसूल की सारी मुसीबतों को सीखते हैं। आज हमने इस आयत पर गौर किया है और आयत यह है कि यीशु ने जवाब दिया, जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि 3 उभरते हुए ख्याल इस आयत से निकलते हैं। हमने पहले ख्याल पर गौर किया कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है, वो हमारी जिंदगियों में काम करता है और हमारी जिंदगियों के जरिए से काम करता है। खुदा के हाथ इस तरह के नहीं हैं, लेकिन खुदा के हाथ हैं। ये जो आपके हाथ हैं ये खुदा के हाथ हैं, हमारी जो टांगे हैं ये खुदा की टांगे हैं। खुदा इस तरीके से ہماری زندگیوں, ہمارے ہاتھوں, ہماری ٹانگوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے. ہماری زندگیوں میں وہ اپنے کام کو محبت سے جاری رکھے ہوئے ہے. اور ہم اگلے ہفتے دوسرے دو خیالوں پر غور کریں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. ہم دعا کریں. خداوند آسمانی باپ, ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے پاک کلام کا دروازہ ہم پر کھولا ہے. اور خداوند آسمانی باپ, تو قدم قدم پر, لہجہ بہ لہجہ اپنی آواز ہماری زندگیوں میں قائم کرتا رہا ہے. ہم نے تیری محبت کو جانا ہے, ہم نے تیرے کام کو جانا ہے, ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ تو ہمارے ساتھ کس قدر گہرے روابط میں اور گہرے تعلق میں قائم ہے. خداوند آج کے پاک کلام کے ذریعے سے ہم نے تیری مرضی کو جانا ہے, سیکھا ہے. اور خداوند ہم نے اس بات کو بھی جانا ہے کہ پطرس کی طرح ہم ہر وقت اس بھید کو نہیں جان سکتے ہیں جو کہ ہماری زندگیوں میں کام کرتے وقت جاری رہتا ہے. لیکن تیرا جواب ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ تو اب نہیں سمجھے گا, لیکن تو وقت آنے پر یہ ساری باتیں سمجھے گا. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے کام کو خداوند اپنی بے تابی اور اپنی بے چینی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتے ہیں, لیکن خداوند اس زندگی میں ہر بات کے لیے جو کہ آسمان کے نیچے ہوتی ہے ایک وقت ہے. اور اس لیے تو نے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے باتوں کو چھپا کر نہیں رکھا ہے. تو نے فرمایا ہے کہ جواب ملے گا, تو سمجھے گا, تجھے ان حقیقتوں کو جاننے کی سمجھ دی جائے گی, لیکن اس کا وقت ہے. لیکن اس وقت تک خداوند ہم تیرے بچے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو کبھی غلطی نہیں کرتا ہے. تو نے جو کام جاری رکھا ہے خداوند آسمانی باپ, تو اسے اپنی مرضی کے مطابق پایا تکمیل تک پہنچا, اور تیری شفقت ہم پر بڑھتی رہے. ہمارا بھروسہ, ہمارا ایمان, ہماری آس تجھ پر ہے. اور جو تو اپنے بچوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے وہ اچانک نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک پلان اور منصوبے کے مطابق ہے. اے خداوند, تیری شفقت ابدی ہے, اور اپنی دستکاری کو ترک نہ کر. تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتے ہیں. آمین.